विषय तो ऐसा चल रहा है कि भगवान ने घाती कर्म का जो नाश किया है, ऐसा जो कहने में आता है वह निमित्त का कथन है और वह बात यहाँ पर अभी हमको कल से चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पहले इस बात का तो हमें नक्की खातरी अपनी होनी चाहिए, वो इस प्रकार की कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, स्वयं से ही वह परिणमता है, अन्य कोई उसे मदद असर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी ऐसा कथन जरूर आता है कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया। जब जब ऐसा निमित्त का कथन वाला जो वाक्य आवे तो वहां समझना चाहिए कि यह तो उपचार से ऐसा किया गया कथन है। अब यहाँ कुंद आचार्य स्वयं लिखते हैं कि भगवान ने घाती कर्म का नाश किया है, तो क्या वो मुनि दशा वाला जीव क्या यह नहीं जानता होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है? अरे उन्होंने तो हमें सिखाया और वे नहीं जानते हो, ऐसा थोड़ी होगा ख्याल में। लेकिन बात तो ये है कि ऐसा क्योंकि जिनको नयों का अभ्यास नहीं है, ऐसे जीवों को समझाने के लिए इस तरह से समझाना पड़ता है लेकिन समझाने से वह अगर ऐसा ही माने तो उसके मान्यता में घोटाला होता है। इसलिए पहले हमें तत्व का अभ्यास करके कि कौन से नए का कैसा कथन है ये समझना चाहिए। और व्यवहार और निश्चय ने की बात तो हमने ऐसे भी बहुत मतलब बार देखी है। तो यहाँ दो द्रव्यों का मिलके जो कथन होता है वह कथन हमेशा वो औपचारिक कथन होता है या निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन भी उपचार का कथन ही होता है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि भगवान ने घाती कर्म का नाश किया ऐसा जो लिखा है यह निमित्त का कथन है। उसके बाद आगे ये बात हुई थी कि जो भगवान है वे हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं यानी हमारे ऊपर उपकार करते हैं, यह भी उपचार का ही कथन है। ऐसा हमने देखा था कि जो स्वयं अपने स्वयं का अनुभव करता है, अपने स्वयं के आत्मा के ऊपर उपकार करता है, उसके ऊपर भगवान उपकार करते हैं, ऐसा कहने में आता है। यानी स्वयं के अनुभव हो जाएगा तब उसको निमित्त रूप से जो भगवान के कहने पर यह जीव मार्ग क्रमण कर रहा है इसलिए उसको ऐसा कहने में आता है कि भगवान के भी उसके ऊपर उपकार है या भगवान ने उसके ऊपर अनुग्रह किया है। इस तरह हमने देखा था। अब यहाँ जो आखिरी पैराग्राफ है जो समय सार में जो बात आती है वह तो समय सार की बात यहाँ पर देखेंगे। श्री समय सार गाथा 34 में कहा है कि आत्मा ने राग का त्याग किया यह नाम मात्र है। क्या कहते हैं? आत्मा ने राग का त्याग किया यह भी कहने मात्र है, नाम मात्र यानी कहने जितना ही है, वास्तव में इतना कोई उसमें ये नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो राग जो है यह राग का जो परिणमन होता है वह जीव का स्वभाव भाव नहीं है, वह तो विभाव भाव है और विभाव भाव करना ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए जीव ने राग को त्याग किया या बहुत राग किया ऐसा कहना भी क्या है? उपचार का कथन है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि समय सार में गाथा नंबर 34 में ये बात बताई है कि आत्मा ने राग का त्याग किया यह नाम मात्र है। यहाँ अभी वहाँ तो राग की बात की है और यहाँ प्रवचन सार में भगवान ने घाती कर्म का नाश किया ऐसा जो कहते हैं वह मात्र यानी सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए है। यानी क्या कह रहे हैं कि जब यह आत्मा अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तो उसकी इतनी शुद्धि बढ़ जाती है कि यहाँ ये शुद्धोपयोग का एक समझ लीजिए अंतर्मुहूर्त काल तक वो शुद्धोपयोग में रह जाते हैं तो वैसे जीव के सामने जो घाती कर्म है वह नष्ट हो जाते हैं। वह बस यहाँ आत्मा में स्थिर हो जाना और वहाँ घाती कर्म में जो कुछ परिणमन होना है वो उसमें होगा, लेकिन दोनों का समय एक है। इसलिए कहते हैं कि जीव ने घाती कर्म का नाश किया। ये कर्म जो स्वयं अकर्म रूप जो होते हैं कल में उसमें जीव का कुछ भी लेन देन है नहीं, जीव की कोई जवाबदारी नहीं, जीव का कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? दोनों द्रव्य भिन्न है और दो द्रव्यों में जो अभाव होता है उसका क्या नाम है बहन? अत्यंत अभाव है। तो अत्यंत अभाव तो दो द्रव्यों में रहता है। तब यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ एक द्रव्य की नाशती है वह उस द्रव्य में जाकर कुछ कार्य करे ये बात बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी ऐसा शास्त्र में उपचार का या व्यवहार का कथन बारंबार आता है और उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान ने घाती कर्म का नाश किया। इसलिए कहते हैं यहाँ ये जो समय प्रवचन सार नामक जो ग्रंथ है वह तो हमने देखा था कि ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, तो वहाँ उपादान का भी ज्ञान कराएंगे, निज स्वभाव का भी ज्ञान कराएंगे और यहाँ उपादेय कहो या जो कार्य हो रहा है, जो निमित्त जो है नैमित्तिक जो है सब की बात यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि ज्ञान किसको नहीं जानेगा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो सबको जानना है, इसलिए ज्ञान में जो जो जानने लायक बात है उस सब का कथन इस शास्त्र में अपने को देखने को मिलेगा। तो कहते हैं भगवान सारी दुनिया के ऊपर कृपा करने में समर्थ है, सिर्फ ये भी उपचार का कथन है। कृपा करने में समर्थ है नहीं, जो जो प्रत्येक जीव अपने स्वयं पर कृपा करेगा तो भगवान के ऊपर आरोप आएगा कि भाई उन्होंने कृपा की है। अर्थात सर्वज्ञ भगवान को परमेश्वरता प्रकट हुई है, जो जीव अपने परमेश्वरता का अलंब ले उन्हें भगवान निमित्त कहलाते हैं। अन्य भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर कृपा करते हैं, वैसे ही सर्वज्ञ देव भी कृपा करते होंगे। तो कहते हैं ना ऊपर वाला मेहरबानी करते हैं, तो ऐसा यहाँ अपने यहाँ कोई मेहरबानी फेरबानी करने वाला कोई नहीं, अपितु स्वयं तेरे में ही प्रभुता गुण है। यानी ये वाचक जो है, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनको कह रहे हैं कि ये ऊपर वाला कोई मेहरबानी करता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि तेरे स्वयं में ही प्रभुता नामक गुण है। परमेश्वर पद की प्रतीति वंत को शुभ राग आया है। यानी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर पद को जाना है समझा है, ऐसे जिनकी उनके ऊपर श्रद्धा है, ऐसे प्रतीतिवंत यानी जो श्रद्धालु है ऐसे जीवों को उनके तरफ देख के राग आता है। और जब ऐसा राग आता है तब कहते हैं इसलिए परमेश्वर निमित्त कहलाते हैं। जो अपनी परमेश्वरता प्रकट करे उन्हें ही वे अनुग्रह करने वाले कहलाते हैं। यानी जिसने अपने स्वरूप को जाना है, अपने में जो परमेश्वरता या प्रभुत्व नामक जो गुण है उसका परिणमन जिन्होंने चालू किया है, अपनी परमेश्वरता प्रकट की है, उन्हें ही कहते हैं कि इनके ऊपर इन्होंने भगवान ने अनुग्रह यानी उनके ऊपर उपकार किया है। मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, शुभ राग का विषय और निमित्त नैमित्तिक संबंध का भेद अथवा राग का विषय गौण करके कि जो उस विषय में नहीं है, जो विषय दृष्टि में गौण है उस विषय को ज्ञान में ज्ञेय तरीके रखते हैं। क्या कहते हैं अपना स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं कि मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, यानी मैं सिद्ध समान हूँ, तो वैसा मैं हूँ। और ये शुभ राग जो है वो शुभ राग का विषय, निमित्त नैमित्तिक संबंध का भेद अथवा जो राग है, इन सबको गौण करके। क्यों गौण करना? कि वो उस विषय में है नहीं जिसका हमें आश्रय लेना है, जिसका हमें आश्रय लेना है, इसमें कोई भी बात बैठती नहीं है। जो विषय दृष्टि में गौण है उस विषय को ज्ञान तरीके ने ज्ञान में नए तरीके रखते हैं। यानी वो अवलंबन लेने का विषय नहीं, लेकिन ज्ञान का विषय जरूर है। ऐसा कहते हमें अवलंबन किसका लेना है, आश्रय किसका लेना है, कि जो परमेश्वर स्वरूप ऐसा जो अपना स्वरूप है उसका, और उस आत्मा में बाकी अन्य सारी बातें जानने योग्य है। ज्ञान का ज्ञेय उसको ज्ञान का ज्ञेय तरीको रखो, ऐसा कहते हैं। आत्मा में अकारण कारित्व शक्ति है, जिसका अर्थ यह है कि आत्मा किसी का कारण नहीं है और वह किसी का कार्य भी नहीं है। यानी आत्मा किसी से बनाया भी नहीं है और आत्मा किसी का कुछ बनावे बना कर ऐसा वो कारण भी नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं है, सब आए परमेश्वर बनाता है ऐसा मानते हैं ना, उनके लिए भी ये लागू होता है। नहीं ध्यान में आया? हाँ देखो क्या कह रहे, फिर से देखो थर्ड लाइन में, आत्मा में अकारण कार्यत्व शक्ति है। तो ये किसके आत्मा की बात कर रहे हैं? भगवान के। हाँ जी, सबके प्रत्येक आत्मा की बात करो ना, अपन आ गए तो उसमें सब उसमें इंक्लूड हो गए। क्या कहते हैं, आत्मा नामक जो कोई द्रव्य है, जीव नामक जो कोई द्रव्य है, उसमें अकारण कार्यत्व शक्ति है। अब उसका अर्थ क्या है कि आत्मा किसी का कारण नहीं है, यानी अन्य द्रव्य में जो कुछ कार्य हो रहा है उसका कारण आत्मा नहीं है, वहाँ कर्म बंधे जा रहे हैं तो उसका कारण आत्मा नहीं है। जो पुद्गल कारमाण वर्गणा है वह कर्म रूप बन रही है या अकर्म रूप बन रही है, तो वो अपनी अपनी योग्यता से वैसा उसका परिणमन हो रहा है। आत्मा उसका कारण है ऐसा नहीं, ऐसा कारण उपादान कारण निमित्त कारण है कहने के लिए। अब क्या कहते हैं कि आत्मा किसी का कारण नहीं है और वह यानी आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है, यानी कोई आत्मा को बना देवे ऐसी भी बात नहीं है। तो आज तक जो मानते थे ना, अरे भगवान ने हमें बनाया है, ये सही बात है कि नहीं? क्या बे, तो भगवान अपना भला करेगा कि नहीं? बुरा तो करेगा, डरना तो चाहिए ना, उसको नमस्कार नहीं करे तो हमारा खराब कुछ करेगा, ऐसा ऐसी मान्यता है कि नहीं? अभी नहीं है, पहले भी नहीं थी, पहले थी। अभी अपने को वस्तु स्वरूप खत्म हम ख्याल में आ गए ना, सब ऐसे पहले की बातें भूल जाने का उसमें क्या, क्योंकि सभी जीव अपनी माता के पेट से तो सीख के नहीं आते हैं। जब शास्त्र वाचेंगे, क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में ये कुछ नहीं सिखाते, वहां तो बाकी पौद्गलिक सारी बातें होती हैं। आत्मा की फिलॉसफी जो है वह तो धर्म में ही मिलेगी, लेकिन कौन से, जैन धर्म में ही मिलेगी, क्योंकि बाकी लोगों जो आत्मा की बात करते हैं वह तो एकांगी है, यानी एकांती है, एकांत से कही जाती है ऐसी बातें हैं। लेकिन अपना जैन दर्शन कैसा है, अनेकांत स्वरूप है, यानी जिसकी जिस उसमें जितने धर्म है प्रत्येक धर्म की अपेक्षा से उसका कथन है। इसमें कहते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा किसी का कार्य है वह भी गलत काम समझ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ, किसी भी पदार्थ को वह कारण रूप नहीं होता, यानी जिस जो कोई पदार्थ यानी द्रव्य है उसका जो कुछ परिणमन हो रहा है उसमें वह कारण रूप नहीं होता, और किसी भी पदार्थ को किसी भी पदार्थ का कारण मिलाकर कार्य रूप नहीं होता। इन्होंने और चौथी बात बता दी, क्या कह सकते, किसी भी पदार्थ का कारण मिलाकर कार्य रूप नहीं होता, यानी कोई परद्रव्य इसका कार्य करे ऐसा भी इसका स्वभाव नहीं है, अपना अपना स्वयं का कार्य करे ऐसा इस आत्मा का स्वभाव। ऐसे गुण के अवलंबन से यह गुण द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त होता है। यह गुण यानी कौन सा, अकारण कार्यत्व शक्ति नामक जो अकारण कार्यत्व जो है वह द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी तो हमने द्रव्य की बात देख ली, तो गुण में जब देखेंगे तो जो आत्मा में अनेक गुण है, अनंत गुण है, वह एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करे। नहीं, ज्ञान अच्छा होगा तो श्रद्धा भी तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं, श्रद्धा को मदद तो करे कि नहीं? नहीं, कि ज्ञान तो सिर्फ जानना 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 जानना, वो श्रद्धा को थोड़ा सा धक्का मार के चलो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। क्यों, उसमें भी अकारण कार्यत्व शक्ति जो है, अकारण कार्यत्व शक्ति उसका भी वहां उधर रूप है, वो तीनों में व्याप्त है। और पर्याय में भी ऐसी बात है कि जो एक ही द्रव्य के अनंत द्रव्यों अनंत गुणों में से एक गुण की जो पर्याय है वह एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य नहीं करेगी। अगर एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य करेगी तो अभी तक मुझे मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन पर्याय चल रही है, तो वह मिथ्या दर्शन कारण और सम्यक दर्शन कार्य ऐसा मानना पड़ेगा। ख्याल में, तो ये लोग जो मानते हैं ना, ये लोग यानी भोले लोग, क्या कि शुभ करते 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 ऐसा टाइम आ जाएगा कि शुभ में से शुद्ध में जाएंगे, शुभ हमको शुद्ध में ढकेल देगा, तो फिर ये नियम अगर हम पक्का करते हैं तो शुभ में आने के लिए हमको पहला अशुभ अशुभ पाप 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 करेंगे तो वो हमको पुण्य में पाप शुभ में ढकेल देगा। दोनों जगह एक कायदा लगे क्या? नहीं लगना चाहिए कि नहीं? ऐसा तो है नहीं, ख्याल में आई बात। यहां कहते हैं कि पर्याय भी जो है प्रत्येक पर्याय उसमें अकारण कार्य तो कारण वो व्याप्त है गुण, इसलिए कहते हैं उसमें भी प्रत्येक पर्याय अपनी अपने से उत्पन्न होती है, प्रत्येक पर्याय का अपना अपना जन्म क्षण है, वह पर्याय कहीं द्रव्य से गुण से या उसके पहले की पर्याय से उत्पन्न होती है, ऐसा भी है नहीं। देखो ऐसी स्वतंत्रता जो इस विश्व में है उस स्वतंत्रता का हमें भान नहीं ज्ञान नहीं तो श्रद्धान कहां से होगा? चलाई थी ना नियंत्रण में क्या कहा? देखो ऐसे गुण के अवलंबन से यह गुण द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त होता है। इस प्रकार द्रव्य दृष्टि में अकारण कार्य है ऐसा ख्याल है, किंतु अल्पराग बाकी है जिससे अरहंत आदि परमेश्वर के ऊपर लक्ष्य जाता है। जो जीव अपनी परमेश्वरता प्रकट करते हैं उनको भगवान निमित्त कहलाते हैं। यदि भगवान वास्तव में कृपा करते हो तो फिर उन्हें सभी को तार देना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं? देखो अभी ऐसा लोग कहते हैं ना कि ये जो क्षायिक सम्यक दर्शन जो होता है ना, तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो केवली या केवल ज्ञानी या श्रुत केवली जो भी होंगे उनके सानिध्य में, अभी हम तो केवली भगवान की लेते हैं, यानी तीर्थंकर के पाद मूल में अगर कोई जीव जावे यानी उनके सानिध्य में सत्संग में रहे तो उनको क्षायिक ज्ञान हो जाता है। तब लोग क्या समझते हैं? क्षायिक सम्यक तो नॉट क्षायिक ज्ञान, सॉरी क्षायिक सम्यक हो जाता। तो अब लोग क्या समझते हैं कि क्षायिक सम्यक तो जो होता है वह तो भगवान ही देते होंगे, तो उनके समोसरण में इतने जीव आते हैं, सबको होना चाहिए। समोसरण में कौन कौन आते जानती है गाली तुम? कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से गति के जीव आते हैं? चारों गति के आएंगे ना, मनुष्य तीरंजन हाँ, और नरक के नहीं? नरेंद्र भाई तो हाँ बोल रहे हैं, नरक के नहीं आएंगे, ये तीनों होंगे, तीनों गति के जीव होंगे। कौन से? मनुष्य तीरंज। तो अभी देखो ये इतने सारे हैं फिर भी इनमें ऐसा नियम है कि मनुष्य गति के जीवों को ही क्षायिक सम्यक तो होता है। कल में हाँ हाँ तीरंज को पांचवें गुण स्थान जो होता है उसको क्षायिक सम्यक नहीं। ऐसा है कि मनुष्य पर्याय में से क्षायिक सम्यक को चालू कर दिया उसने और वो मरकर तीरंज गति में जावे तो वहां उधर पूरा होगा, शुरुआत तो मनुष्य गति के जीवों को ही होगी। देव गति के जीवों को भी क्षायिक सम्यक नहीं होता, ऐसा नियम है। तो हाँ हाँ स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग की बात करें, अब आगे क्या बात कहते हैं? अगर भगवान ही सबको सम्यक दर्शन देते होंगे तो सबको देना चाहिए, तो वो सबको नहीं देते इसके मतलब उसमें कोई राग द्वेष अभी बाकी होना चाहिए कि भाई इनको दिया इनको नहीं दिया, उसको दिया उसको नहीं दिया, तो उनमें भी पार्शियलिटी चलती होगी। ऐसा वही वास्तव में प्रत्येक द्रव्य जो कोई क्षायिक सम्यक को प्राप्त करता है वह तो अपनी योग्यता के कारण पैदा करता है, लेकिन उसमें निमित्त रूप से वहां तीर्थंकर आदि केवली जो भी होंगे वो होते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि यदि भगवान वास्तव में कृपा करते हो तो फिर उन्हें सभी को तार देना चाहिए, यानी सबको संसार से पार कर देना चाहिए। अतः जो स्व आश्रय से स्व संवेदन प्रकट करे उन्हें ही वे यानी भगवान निमित्त कहलाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले के क्रम में सर्वज्ञ निमित्त होते हैं, किंतु उसमें कुदेवादि कभी निमित्त नहीं होते। ये जो पहला शब्द है क्रमबद्ध पर्याय, वह एक शब्द चाहिए, जुदा लिखा है ना, क्रमबद्ध पर्याय एक शब्द चाहिए, पर्याय भी साथ में चाहिए। देखो प्रश्न पहले पूछा है, यदि ऐसा है तो फिर क्रमबद्ध कहाँ रहा? तो क्रमबद्ध को जानने वाला राग का कर्ता नहीं होता, वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है। उसके क्रम में जो राग आया है उससे भगवान को वंदन करते हैं, उन्हें भगवान तारते हैं, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। जिसे जिसकी रुचि होती है वह उसमें वीर यानी पुरुषार्थ की पूर्णा करता है।
यहाँ जो है ना क्रमबद्ध का निर्णय करने वाला या क्रमबद्ध को जानने वाला, उसका अर्थ क्या है? समय दृष्टि की अलग शब्द में लिखा है यहाँ, निर्णय करने वाला या जानने वाला, मैंने यहाँ ऐसा जाना, जो समय दृष्टि है उसी को क्रमबद्ध का निर्णय है और वही क्रमबद्ध का जानने वाला है और वो राग का कर्ता नहीं है।
एक बार बात आई थी नहीं, यहाँ ऐसा कहते हैं कि जिन्हें सर्वज्ञ की यथार्थ श्रद्धा है उन्हें ही क्रमबद्ध पर्याय सही रूप से ज्ञान में आता है। अब बात ऐसी है कि सर्वज्ञ का यथार्थ जिन्हें ज्ञान हुआ है उसको तो समय दर्शन हो गए, और इसलिए क्या कहते हैं, वो जो राग परिणाम उस समय दृष्टि जीव के जो आ रहे उसका भी वह कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि भगवान ने जो क्रमबद्ध पर्याय की बात हमें समझाई है वह तो हमारे ज्ञान में तो जरूर आई है, लेकिन हमने उसको सही रूप से माना नहीं। वो मानने वाला कौन होगा? तो जिसने सर्वज्ञ को यथार्थतया माना है। वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है, यानी क्या, ज्ञानन लेखन स्वभाव ही है, वह राग का कर्ता नहीं है। इस तरह से बताते हैं, उसके क्रम में जो राग आया है यानी वो अभी सम्यक दृष्टि तो हो गया और उसको अभी राग भी आ रहा है और उसके कारण उससे वो भगवान को वंदन करते हैं, तो जो ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं उन्हें भगवान तारते हैं, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। अब ये जो है ना, जिसे जिसकी रुचि होती है वह उसमें वीर की स्फूर्णा करता है, यानी हम हमेशा जो याद करते हैं कि हमें मालूम है कि रुचि अनुयायी वीर यानी जिसमें जिसकी रुचि होगी वहाँ वह कार्य करेगा, मतलब वहाँ उसका पुरुषार्थ उपाड़ेगा। गुजराती में यहाँ संपूर्ण जगत में अभव्य को अलग नहीं किया है, भगवान पने में परमेश्वरता का निमित्त सदा ही है, किंतु जो अपने उपादान के आधार से स्वयं धर्म प्रकट करे उसे वे यानी भगवान निमित्त कहने में आते हैं। यानी यहाँ एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि क्या कहते हैं, अभव्य जीवों को अलग से निकाला नहीं है, इसी में इंक्लूड किया है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो स्वयं अपना आधार, अपनी निजी शक्ति जो है उपादान, तो उसका आधार लेके सम्यक तो प्राप्त करते हैं, तो उन्हें धर्म प्रकट करने में ये भगवान निमित्त है, ऐसा कहने में आता है। इस प्रकार वंदन करने वाला तथा वंदन करने लायक कैसे होते हैं, उसके कैसे होते हैं प्रश्न पूछा, उनके विवेक सहित की बात चलती है। यदि धर्म में निमित्त होंगे तो ऐसे ही निमित्त होते हैं, क्रमबद्ध का निर्णय ज्ञाता दृष्टा स्वभाव सन्मुख होकर किया है, इस प्रकार समझे तो उनके क्रमबद्ध में सर्वज्ञ का निमित्त होता है, पर परमेश्वर व्यवहार उपचार है। यानी पर यानी किसको छोड़ दिया, परमेश्वर को, कोई स्व परमेश्वर न लेते हुए पर परमेश्वर, वह व्यवहार है या उपचार है। मैं यथार्थ दर्शन ज्ञान संपन्न हूँ, क्रमबद्ध का निर्णय होने पर जो ज्ञाता दृष्टा हुआ है उसे शेष रहे हुए राग के क्रम में ऐसा राग आता है और ऐसे निमित्त क्रम में होते हैं, यह बताते हैं। जो जीव तिरे उन्हें भगवान तारने वाले निमित्त कहलाते हैं, तथा कैसे हैं महावीर भगवान तीर्थपने के कारण योगियों को तारने में समर्थ है। यहाँ योगियों को यानी सबको, जो सम्यक दृष्टि है ऐसे सबको लेना, योगी तो वास्तव में यहाँ मुनियों को बताया है। समर्थ है कौन? तो भगवान महावीर। और कहते कि तीर्थ पने के कारण, तीर्थ यानी जिनके आश्रय से जीव तर जाता है, मतलब तीर्था है, उसको तीर्थ कहते हैं। भगवान महावीर तीर्थ है अर्थात तिरने वाले जीवों को निमित्त है, जिन्होंने ज्ञायक स्वरूप आत्मा में जुड़ान किया है। व्यवहार पुण्य पाप में जिनका एकांत जुड़ान छूट गया है, अल्पराग बाकी है, ऐसे साधक उन्हें नमस्कार करते हैं। वे उन्हें तीर्थ करने के कारण नमस्कार करते हैं, यानी वे लोग उन्हें यानी भगवान महावीर को उनमें तीर्थपना है इस कारण उन्हें नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर तीर्थपने को प्राप्त हुए हैं इसलिए वे तीर्थ हैं। वे तारने वाले हैं परंतु किन्हें? जो स्वयं तिरे उन्हें। देखो क्या कहते हैं, अभी आगे बताते हैं शायद इसमें, क्या कल ही आ गया पता नहीं है। हाँ, जो पानी होता है उसको भी तीर्थ कहते हैं। तो पानी जो है वो जो जो पानी में गिरे सबको तार देवे ना, हाँ? तो जो स्वयं तीरता है, मतलब स्वयं स्विमिंग करता है आजकल की भाषा में, वही उसमें तर जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। ख्याल में वैसा जो स्वयं अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं तो उनको तारने में भगवान निमित्त है ऐसा कहने में आता है। अगर वैसा तो फिर पानी में जो कुछ गिरे सबको तिरना आना चाहिए, लेकिन मेरे को तिरने को नहीं आता तो डूब जाऊंगा मैं, ऐसा कहते हैं। जो तिरे उसको वो निमित्त, वैसे जो अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर ये संसार सागर को तिरे उसको वो भगवान निमित्त है ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहा, वे तारने वाले हैं परंतु किन्हें? जो स्वयं तिरे उन्हें। निश्चय तीर्थ स्वयं का आत्मा है, ऐसा जो निर्णय करे उन्हें भगवान व्यवहार तीर्थ है। त्रिलोकीनाथ परमात्मा तिर गए हैं इसलिए वे तीर्थ है। मैं देहादि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, पर से पृथक हूँ, पुण्य पाप मेरे में नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञानानंद स्वरूप में विशेष जुड़ान करते हैं ऐसे योगियों को तारने में भगवान समर्थ है। यानी पहले वो मूल बात क्या बताई है कि मूल में जो जीव स्वयं में ये शरीर से राग से आदि अन्य भिन्न जो पदार्थ है उनसे में जुदा हूँ ऐसा समझते हैं, मानते हैं और इतना ही मानते नहीं तो अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं, स्वरूप में जुड़ जाते हैं, उनको भगवान फिरने में निमित्त है ऐसा कहने में आता है। देखो देखो तुला सांगेगा
जुड़ना, योगियों के लिए ये जुड़ना ऐसा शब्द लिया है, योग यानी जुड़ना, वो किसके साथ जुड़ गए हैं ऐसी बात है। यहाँ तो अपने ज्ञानानंद स्वरूप में विशेष जुड़ान किया है और जब पहले पुण्य पाप में जुड़ान किया था वो अभी छूट गया उनका, इसलिए उनको योगी ऐसा कहा।
देखो अभी हमारे में क्या क्या गड़बड़ी है देख लेते और उनमें क्या क्या नहीं रही है वो देखते हैं कि मैं देहादी हूँ ऐसा हम मानते हैं। नहीं मैं देहादी मैं नहीं हूँ लेकिन मैं उसका करता तो हूँ ना, उसको रोजाना बादाम और कुछ कुछ अन्य अन्य क्या और खजूर ऐसा खिलावे तो आत्मा शरीर एकदम तगड़ा हो जाता है ना, इसलिए अपन उसको अन्य अन्य कुछ कुछ खिलाते हैं तो हम उसके करता है ऐसा मानते हैं। क्या कहा देखो, मैं देहादि का करता हूँ और देहादि का भोक्ता भी हूँ, जो करता मानता है वो भोक्ता भी मानता है। मैं पर से पृथक नहीं हूँ ऐसा हम मानते हैं और पुण्य और पाप मेरे नहीं है तो वो तो हमें तो करना ही चाहिए ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक पुण्य तो करना ही चाहिए ना, ऐसा लोग मानते हैं ना बेटा। तो यहाँ क्या कहते हैं, मुनिराज जो होते हैं वे कहते हैं देहादि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ मैं, पर से पृथक हूँ, पुण्य पाप मेरे नहीं है, इस प्रकार अपने ज्ञानानंद स्वरूप में विशेष जुड़ान करते हैं। जो अपने स्वरूप में जुड़ान हो जाता है तब सामने वाली बातें जो अभी जो जो बताए कि पर में एकत्व बुद्धि या शरीर में एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि या पुण्य पाप का मैं करने धरने वाला हूँ, पुण्य पाप को मैं भोगने वाला हूँ ऐसा जो ये जीव मानता है वो परिणाम ही रहते नहीं, वो तो इन सब बातों के ज्ञाता रह जाते हैं। ऐसे जो मुनिराज है तो वो कहते कि ऐसे योगियों को तारने में भगवान समर्थ है, वे स्वयं तिर गए हैं तिर रहे हैं तो उनको तारने में भगवान को निमित्त कहने में आता है। यदि भगवान वास्तव में तार देते हो तो एक भगवान होते ही उन्हें सभी को तार देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, जिनमें अंतर मार्ग प्रदर्शन हुआ है उन्हें वे मात्र प्रदर्शन करने वाले कहलाते हैं। प्रदर्शन यानी वो प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन नहीं समझना, विशेष रूप से श्रद्धा करना प्रदर्शन, हाँ जी जानना प्रकट हुआ है, जिन्हें अंतर मार्ग प्रदर्शन हुआ है यानी प्रकट हुआ है ऐसा भी ले लो आप। हाँ उत्कृष्ट प्रकार का दर्शन ऐसा आप कहेंगे तो दर्शन यानी वो श्रद्धा की बात नहीं होगी, तो देखने की बात होगी, जानने की बात, वही तो कह रहे हैं। जिनमें अंतर मार्ग प्रदर्शित हुआ या उत्पन्न हुआ ऐसा ले लो ना, उन्हें वे मात्र प्रदर्शन करने वाले कहलाते हैं। मैं ज्ञान स्वभाव से जानने में आऊं ऐसा हूँ, क्या कहते हैं। देखो ये आत्मा की एक ऐसी बहुत अच्छी बात है, उसका स्वभाव ही इतना बढ़िया है कि उसमें पहले में पहला तो क्या है, ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण के द्वारा वो सबको जानता है, तो सबको जानता है तो सब में कौन कौन आ गए, पूरे लोकालोक को जानता है, तो पूरे लोकालोक में स्वयं है कि नहीं, तो कहते हैं। तो फिर और एक आत्मा में ऐसी अच्छी बात है कि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण भी है, तो प्रमेयत्व गुण क्या करता है कि वो कोई ना कोई ज्ञान में झलके ऐसा उसका स्वभाव है, हर समय उसका परिणमन क्या चल रहा है, कोई ना कोई ज्ञान में झलके, कोई ना कोई ज्ञान में झलके, कोई ना कोई ज्ञान में झलके, ये इसे उसकी निजी शक्ति है। तो ये ज्ञान में झलके ऐसी शक्ति है और ज्ञान गुण के कारण जानने की शक्ति उसमें, यानी दोनों तरफ से उसके फेवर में है,
चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ,
जो अपना अनुभव करे उसको दोनों एक साथ होगा। लेकिन अभी अन्यों में क्या है, खुदगल है, धर्म अधर्म आकाश काल है, इनमें तो ज्ञान में आने की शक्ति दूसरे की है, क्यों उनके तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान का धारी और प्रमेय गुण का धारी एक अकेला आत्मा ही है कि जो स्व को भी जाने और अन्य अनंत पदार्थों को भी जाने। हेलो, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञान स्वभाव से जानने में आऊं ऐसा हूं, यानी ज्ञान स्वभाव जो मेरा है उसके द्वारा मैं स्वयं को जानूं ऐसा मेरा स्वभाव है। मैं भगवान को नमस्कार करता हूं क्योंकि वे तीन लोक के पूज्य है, इसलिए उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने घाती कर्म का नाश किया है, इसलिए वे जगत पर अनुग्रह करने वाले हैं। अतः तिरने वाले आत्मा को वे ही निमित्त हो सकते हैं। इस प्रकार वे योगियों को तारने में समर्थ है। भगवान शुद्ध परिणति के करता है और पात्र जीवों को निमित्त रूप से धर्म के करता है। अभी क्या कहा, अभी तक तो ऐसा कहा। हाँ, कल नहीं आए थे आप? कल नहीं आए? अनुग्रह शब्द का अर्थ उपकार करते हैं। जगत पर अनुग्रह करते यानी क्या, कि जो जीव स्वयं का उपकार करता है उसको वे उपकार करते हैं, ऐसा कहने में आता है। तो स्वयं का उपकार करते यानी क्या, कि स्वयं अपने को जानता है। जो हम कहते हैं ना कि स्व हिंसा को टालता है, तो उसने स्वयं के ऊपर उपकार किया, यानी भाव मरण जो समय समय हो रहा था उसको रोकता है। क्या करता है, रोकता है यानी अपने स्वरूप का अनुभव करता है। तो उसने स्वयं पर अनुग्रह किया, ऐसे जीव को भगवान अनुग्रह करते हैं ऐसा कहने में आता है। अब यहाँ क्या कहते हैं, भगवान शुद्ध परिणति के करता है, राग द्वेष के करता है ऐसा नहीं समझा रहे। और पात्र जीव को निमित्त रूप से धर्म के करता है, तो पात्र जीव जो होते हैं वो स्वयं अपने अपना धर्म करते हैं, यानी अपने स्वरूप में स्वरूप का अनुभव करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उनको भगवान निमित्त है ऐसा कहने में आता है। तो वो उनके निमित्त रूप से धर्म के करता है, यानी कर्ता भी दो प्रकार के हैं ऐसा नहीं समझना कि निमित्त करता और एक उपादान करता, ऐसा नहीं समझना, उपचार से ऐसा कहने में आता है। क्योंकि अभी बहुत बार अपनी ऐसी भी आदत हो जाती है कि भाई जहां हम यहां सीखते शुरू में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हाँ बराबर, लेकिन वो गरीब भिखारी जो जाता होगा तो उसको खाना खिलावे क्या नहीं खिलावे, अरे तू कौन खिलाने वाला, कि जब उसके पुण्य का उदय आएगा, उसको भूख लगी होगी और पुण्य का उदय आएगा तो उसको खाना मिल जाएगा, तू कौन देने वाला। तो तू हो सकता है कि निमित्त हो जाए, तो अन्य लोग न देते हुए तू दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं उसको खाना देने वाला करता नहीं हूं लेकिन निमित्त करता तो हूं ना, ऐसा अगर कोई मानता है तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि इस जीव को कर्ता बुद्धि इतनी ठसोठस घुसी हुई है कि कहीं ना कहीं जाकर मैं पढ़कर कुछ कर सकता हूं या करना चाहिए, ऐसे इस जीव के टेव लगी कुटे। यहां कहते हैं भगवान शुद्ध परिणति के करता है और पात्र जीव को निमित्त रूप से धर्म के करता है, ये भी उपचार का कथन है। दूसरा और के बाद का तथा कैसे है, भगवान धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के करने वाले हैं, महावीर भगवान के कर्ता गुण ने क्या किया, उनके कर्ता गुण ने, ये कर्ता गुण सब में होता है ये तो आप जानते हैं कि नहीं, हा? कौन कौन से गुण होते कर्ता के साथ जानती है, सर डॉडी बोलेगी। हाँ नहीं जानते, कोई बात नहीं, सुशीला भी नहीं जानती है, बताएगी।
कौन बोला अधिकरण?
बहुत अच्छा, ये छह गुण उसको एक साथ लगते हुए हैं, मतलब ये षट कारक जो होते हैं वो हमेशा एक साथ परिणमित होते हैं। वैसे तो आनंद गुण परिणमित होते हैं, लेकिन ये एक जोड़ी है ना, मतलब उनका षटक है सब। तो कहते हैं कर्ता, उनके कर्ता गुण यानी भगवान के जो कर्ता गुण ने अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता होकर केवल ज्ञान प्रकट किया है, इसलिए भगवान शुद्ध स्वरूप परिणति के करने वाले हैं, किंतु वे दिव्य ध्वनि उपदेश के कर्ता नहीं हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा है लता बेन? दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं बोलते, हम तो दिव्य ध्वनि सुनने को समाचरण में जाके आए हैं, यहाँ तो लिखते हैं दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं है। कहा तो है, फिर वो उसका कर्ता कौन है फिर? दिव्य ध्वनि का काम तो होता है ना, दिव्य ध्वनि तो कीर्ति तो है ना, और उनके सर्वांग में से कीर्ति। हाँ तो शरीर तो कर्ता होना चाहिए ना, ऐसा मैं बोलता, भगवान नहीं तो नहीं, कौन है फिर कर्ता? अभाव कोई नहीं बात होगी, अरे ऐसा नहीं चलेगा। प्रभा बेन आप कहेगी पर उसका नाम क्या है, कुदगल का भी कोई वैरायटी होगी कि नहीं? अरे अरे अरे, जब भी आपका नंबर गया फिर आती है जोर से, अभी तो बोलते अपने आप होता है, और वो बहन ने बराबर सही उत्तर दिया तो फिर अपन जोड़ देते हैं। अरे वाह, ऐसा नहीं चलेगा, अपना टर्न गया तो बीच में नहीं बोलने का, तो उनको भी सोचना चाहिए ना, सबको सोचने का। ये देखो मैं कोई बात, देखो यहाँ पर रोज जो आते थे ना पहले से, बहुत दिन से आते हैं, इनको तो ये बात पूरी याद है, मैं उनसे नहीं पूछूंगा, लेकिन सबका मुंह कैसे बंद करूं? हाँ मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि भाई बीच में मत बोलना, इतना बोल सकूंगा, लेकिन अंदर से ऐसा उछाल आ जाता है कि मेरे को आता है। अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक बार हम विचार करेंगे तो विचार करने के बाद वो बिल्कुल बात ख्याल में बैठती है, अभी भूलता नहीं कोई। तो अभी ये जो दिव्य ध्वनि है उसका कर्ता कौन है? भाषा वर्गना। और अभी जो आप बोल रहे हो उसका कर्ता कौन है? पक्का? तो तुम गूंगी है ना बोलने को? हाँ बोलने को तकलीफ होती है। आत्मा? हाँ, अपने को आत्मा माना नहीं, इसलिए मैं तो अभी तो बोल रहा ही ना, ऐसा क्या करते हैं? देखो बहन ऐसी बात है ना कि मैं बोल सकती हूँ, ऐसा मानना भी गलत है, और मैं मौन रखता हूँ ऐसा मानना भी गलत है, क्योंकि मैं नहीं बोलता, यानी भाषा वर्गने का कार्य मैं नहीं करता, ऐसा होता है। देखो जैन दर्शन में तलवार के धार ऊपर चलने वाली बात है, बराबर समझ हो जाए तो एकदम आसान है, और नहीं समझे तो इधर से इधर कहीं गिर जाए तो पता नहीं है, दोनों तरफ से लेना, क्योंकि यह जो पुद्गल है वह तो भिन्न अन्य द्रव्य है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहने में आता है कि जब यहाँ इस जीव के योग और उपयोग काम करता है तो वह वाणी भी उस समय फिरती है या भाषा वर्गना काम करती है, तो कहेंगे कि हमने आस्ते बोला, जोर से बोला, लेकिन ये भाषा वर्गने का और अपना जो बात चल रही वो अपने तक ही सीमित रखना, नहीं तो क्या होगा? क्या कहते हैं? वो सोनू निगम मिलेगा तो उसको बोलना मत कि तेरे को गाने को नहीं आता है, ऐसा बोलेंगे तो मार खाएंगे। चलो तो यहाँ बात क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान शुद्ध स्वरूप परिणति के करने वाले हैं, किंतु वे दिव्य ध्वनि उपदेश के कर्ता नहीं है। तो 66 दिन के बाद तो भगवान महावीर की वाणी फिरी, ऐसा बोलते हैं, और जो निमित्त का जोर करते हैं ना, देखो वो गणधर नहीं आया इसलिए वाणी नहीं फिरी, गणधर आती निमित्त आते झड़ा तक चालू हो गए। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि भाषा वर्गना का कार्य है, तो ये नक्की करना चाहिए उस भाषा वर्गना रूप पुद्गल जो था उसको ज्ञान होना चाहिए कि अरे अभी तो वो गणधर आया नहीं है,
हाँ तो आपन कैसा बोलना, इसको ज्ञान होना चाहिए। देखो अपनी क्या क्या है कि खोटी खोटी मानने था ना, ऐसे एक एक पद पर मतलब पदे पदे आवी बात निकले तो हम क्या क्या मानते थे और कैसा कैसा मानते थे इस बात का हमें पता लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो शुद्ध परिणति के करने वाले हैं किंतु दिव्य ध्वनि के या उपदेश के कर्ता नहीं है। अरे वो उपदेश देने का उनको राग भी नहीं होता क्योंकि वो तो बारहवें गुणस्थान में वितरागी हुए हैं, राग का लवलेश भी नहीं है, रत्ती भर भी राग उनमें नहीं है। क्योंकि ये जैन दर्शन तो ऐसा कहता है कि कोई भी जीव पहले वितराग होगा और बाद में सर्वज्ञ होगा, उल्टा हो जाए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी कि पहले सर्वज्ञ हो जाए तो राग बाकी है तो उसने जाना अरे ये सुशीला बहन ने गए जन्म में मेरे को बहुत तकलीफ दी थी, चलो अभी उसको सीधा कर देंगे, तो उसने मेरे बाप को मारा था, उसने मेरे फला को, सर्वज्ञ हो गया ना, आनंद भोग का ज्ञान हो जावे उसको। और फिर भी वो सर्वज्ञ तो खाली ज्ञान से हुआ है, तो ऐसे भिन्नता अभी किधर आई है, उल्टा हो जावे तो फिर ऐसा राग देख करके लड़ाई करेगा और हिंसा अधिक करेगा, पाप करेगा। लेकिन क्या बताया, पहले वितराग हो जाता है फिर बाद में पूरे लोकालोक को जाने, जितने कसाई खाने में जो कुछ मरते हैं जी, जो कुछ और गंदा काम होता है वो क्या नहीं जानते होंगे, तो कितने दुखी होते होंगे बिचारे। देखो ये तरीके से हम समझते हैं तो हमें भी थोड़ा अपने में भी ऐसा शांति, मतलब क्या कहते हैं, तीव्र राग भी कम हो जाते हैं कि वो ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि पहले वितरागी हो जाते हैं और बाद में सर्वज्ञ, तो कितना सही है ये। तो यहाँ तो कह रहे कि दिव्य ध्वनि के उपदेश के कर्ता नहीं है, परिणमित हो वह कर्ता। देखो एक एक छोटे छोटे वाक्य है, ये जो स्वयं परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं, तो कहते हो परिणमित हो वह कर्ता और परिणाम यानि परिणमन वह कर्म या कार्य है, एक ही यानी और एक नाम हो गया इसमें, कर्म कहो परिणाम कहो परिणमन कहो कार्य कहो पर्याय कहो अवस्था कहो, ये सब एक अर्थवाची नाम है, सब ख्याल में आया। तो भगवान अपनी निर्मलता के कर्ता है, इस प्रकार वे अपनी शुद्ध परिणति के करने वाले हैं, अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग में किसको लेना, बबीता तू जानती है अशुद्ध उपयोग को किसको लेना, नहीं शाबाश, शुभोपयोग और अशुभोपयोग इन दोनों को अशुद्धोपयोग कहा, तो यहाँ अशुद्धोपयोग कहा ना, यानी जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वो सारे क्या हो गए, अशुद्ध उपयोग, और वाणी के कंपन में भी वे करता नहीं है, यानी शुभ भाव करने वाला भी आत्मा नहीं है, क्या आ गया ना, तो वे यानी वहां तो आप भगवान की बात कर रहे हैं, अशुद्ध उपयोग और वाणी के कंपन के भी वे करता नहीं है, शुद्ध धर्म के करता है। अन्य जो जीव शुद्ध स्वरूप परिणति करते हैं उनको निमित्त रूप से शुद्ध स्वरूप के करने वाले कहने में आता है। जैसा कोई बालक होता है वो एसएससी के परीक्षा में बैठता है और अच्छे मार्क से अपना क्या बोलते हैं एसएससी बोर्ड में पहला आता है, तो उसको टीवी वाले जाके पूछते हैं पर अरे मेरे बाबा की मेहरबानी से मैं ऐसा हुआ, तो मेरे बाबा ने मेरे को पहले नंबर आने में बहुत मदद की, तो क्या की, तो माँ बाप जाके परीक्षा दे के आए, वो माँ बोले कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, उसको शाबाशी दे, तो कह गए नहीं आपके बदौलत ये सारा हुआ, आपकी पुण्याई मेरे काम में आई। कैसा लोग क्या क्या बोलते हैं, बोलने में कोई तकरार नहीं, लेकिन हम माने ऐसा कि मम्मी बोलते हैं हाँ हाँ रात को 3 बजे उठा के मैंने उसको चाय कितनी बार पिलाई है और ये किया है, उसके साथ साथ जाग जाग के मैं बैठती थी, मैं जरा सो तो वो बोलती है क्यों नहीं सोती है, वो अभ्यास करे मैं नहीं सोऊ, ऐसा मैंने कितने दिन निकाल दिए। मैं ऐसा करती थी इसलिए पास हुआ, मेरे को क्या होता है। तो फिर तुम्हें जाके परीक्षा में बैठते थे ना, लेकिन ऐसा वो विनय से ऐसा कहे, लेकिन अगर वो माने कि मेरे कारण ऐसा हुआ है, और लोग क्या बोलते हैं, अरे ये हमारे माँ बाप की पुण्य ही है, तो तू बिना पुण्य का है तो दूसरे के पुण्य का उधारी तू लेके आए, ये सब लॉरी में देखते हैं ना, आई बापा की पुण्य है या माई की पुण्य है, ऐसा कुछ 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 लिखते, तो ये मानते ऐसा है, इसमें गड़बड़ी है, लिखने में क्या भाई। हम भी तो कहेंगे कि हमारे पिताजी की ऐसी हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने हमको जल्दी घर से वहां धक्का मार के बाहर निकाला और जुदा कर दिया, कुछ आवश्यकता नहीं थी, और हम उस समय आना भी नहीं चाहते थे अलग रहने के लिए, चार भाई साथ रहते थे। लेकिन अब सोचता हूं कि अगर मैं इसी घर में रहता तो ये अपना जो अभी चल रहा है वो कहां होता, हा? सब घर के बाहर निकाल देते, तू जा हिमालय पे जाके रहे। लेकिन इतना तो अभी हम जरूर कहेंगे कि मेरे पिताजी ने हमारे ऊपर बहुत अनंत उपकार किए, और उसके गवाह ये मेरे बने हुए हैं, दो बहनें हैं, ये है, इसके घर में हम रहते थे पहले, आप भी जानते हैं हमारा पहला घर, ये भी जानती है। लेकिन अभी जब कार्य हुआ तो हम उनके ऊपर आरोप करेंगे कि भाई उनके कहने पे हम चले और इस कारण आज ये कार्य हुआ। लेकिन फिर हम ऐसा भी कहेंगे कि भाई हमारी पुण्य का उदय था तो जल्दी हमको अलग घर मिला, हा? कुछ भी कहो लेकिन कहने से वैसा मानो मत। तो यहां वही कह रहे हैं, जो परिणमित हो वह करता है और परिणाम परिणमन वह कार्य है। भगवान अपनी निर्मलता के करता है, इस प्रकार वे अपनी शुद्ध परिणति के करने वाले हैं। अशुद्ध उपयोग वाणी के कंपन के भी वे करता नहीं है, शुद्ध धर्म के करता है। अन्य जो जीव शुद्ध स्वरूप परिणति करते हैं उनको निमित्त रूप से शुद्ध स्वरूप के करने वाले कहने में आते हैं, कहने में आते हैं। इस प्रकार स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, वह निमित्त को ख्याल में रखता है। जो उपादान निमित्त दोनों का ज्ञान करता है, यानी अभी जो कह रहे हैं वो उपादान और निमित्त दोनों का ज्ञान करता है, इसलिए भगवान साधक जीव को शुभ रात के समय नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहते हैं। यानी अभी हम ऐसा कहेंगे ना, कभी जैसा अभी हम अभी शास्त्र अभ्यास नहीं कर रहे हैं, कभी ऐसे आराम से बैठे, अरे पिताजी ने हमको ऐसा घर नहीं दिया होता, हम दोनों की जगह 25 जने होते तो कैसा ऐसा अभ्यास होता हमारा, ऐसा लगता है ना। तो वैसा यहाँ कहते कि जब भगवान शुभ राग आता है तब वह उस भगवान को ही वो ही नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने ये मार्ग बताया। इसलिए कहा, इसलिए भगवान साधक जीव को शुभ राग के समय, शुद्ध उपयोग के समय में नहीं, शुभ राग के समय नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहते हैं। जिन्हें अपनी आत्मा का भाव भाषण हुआ है, ये भाव और भाषण में डैश है को दिया, एक शब्द चाहिए, जिन्हें अपनी आत्मा का भाव भाषण हुआ है उन्हें भगवान का नाम अच्छा लगता है। तीन लोग के गुरु अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता वाले, तारने वाले और धर्म के कर्ता, ये चार विशेषण भगवान को लागू पड़ते हैं। भगवान परम पूज्य है, महादेवाधिदेव है, परमेश्वर है, परम पूज्य है, जिनका नाम ग्रहण यानी लेना भी अच्छा है। किंतु यह सम्यक दृष्टि की बात है, ज्ञान से जाना जा सकता है। मैं दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय करने वाले को भगवान का उत्तम मंगलमय नाम भी भला है। नाम निक्षेप वंदनीय तब कहलाता है कि जब अभ्यंतर जब अंतर सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। उन्हें चारों निक्षेप अभेद गिनकर निश्चय वंदन करने से भगवान का नाम भी वंदनीय है ऐसा कहा है। नाम को जानने वाला
जावानी के जानते सुझे लोकालो तो वाणी मस्तकण सदा दे सो।
अरविंद
बोलो दिनवाणी माता की।